शांति, ओम शांति। आज सत्य बाप ने सच्ची सच्ची सत्य नारायण की कथा सुनाई है, तो आज की मुरली है सत्यनारायण की कथा। सत्यनारायण की कथा में क्या बताते हैं कि कैसे नर नारायण बनता है, नारी और नारायण फिर नर कैसे बनता है, तो वो कहानी के रूप में बताया है कि माँ बेटी थी और फिर उसका पति और बेटी का पति तो ससुर दामाद वो गए विदेश में धन कमाने, तो उस खुशी में सत्यनारायण की कथा करना भूल गए। वहां से धन तो कमा के आए, लेकिन जब वापस आए तो सत्यनारायण की कथा तो की नहीं थी, तो धन तो लेकर आए थे, लेकिन जब तट पर पहुंचे तो एक बूढ़ा ब्राह्मण उसके आगे खड़ा हो गया और उससे पूछा, क्योंकि वो बोट में आए थे तो खूब सोना चांदी सब लेकर आए थे, तो उन्होंने क्या कहा कि इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें तो ककपन है, घास फूस है। तो उस बूढ़े ब्राह्मण ने उनको कहा तथास्तु, वैसा ही होगा। तो सारा धन सारी संपत्ति वो पत्ते और झाड़ियों के रूप में ही हो गई और सारा धन खत्म हो गया। फिर उनको याद आया कि हमने तो सत्यनारायण की कथा की नहीं, इसलिए हम ऐसे कंगाल हो गए। तो फिर सत्यनारायण की कथा की और उसके बाद फिर माला माल हो गए। बस ये कहानी है सत्यनारायण की कथा, पर सच्ची सत्यनारायण की कथा जिससे हम माला माल बनते हैं और उस कथा को भूलने से कंगाल बनते हैं, वो कौन सी है वो कथा, वो तो बताते नहीं है। केवल एक ससुर और दामाद और माँ बेटी उसकी कहानी बताते हैं। तो आज बाबा ने जो सत्य बाप है आकर के कैसे सच्ची सच्ची सत्य नारायण की कथा सुनाते हैं जिससे हम नर से नारायण बन जाते हैं। तो कैसे नर से नारायण हम बनते हैं, फिर नर कैसे बनते हैं, फिर नारायण कैसे बनना है, वो कथा के रूप में आज बाबा ने सुनाया। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। बच्चों को भी कहानी सुनना पसंद आता है ना, तो हम भी तो बाबा के बच्चे हैं, तो कहानी के रूप में बाबा बताते हैं। आज 17/3/2026 है। मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे सत्य बाप से सत्य कथा सुनकर नर से नारायण बनते हो। मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे सत्य बाप से सत्य कथा सुनकर नर से नारायण बनते हो। तुम्हें 21 जन्मों के लिए बेहद के बाप से वर्षा मिल जाता है। प्रश्न है, बाप की किस आज्ञा को पालन करने वाले बच्चे ही पारस बुद्धि बनते हैं। तो नारायण से नर बने माना पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बन गए। फिर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि कैसे बनते हैं, तो कौन सी आज्ञा बाबा करते हैं जिस आज्ञा का पालन करने से हम फिर से पारस बुद्धि बन जाते हैं। तो उत्तर है, बाप की आज्ञा है। क्या आज्ञा होगी, जो पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाए, बहुत बड़ी आज्ञा है। बाप की आज्ञा है देह के सब संबंधों को भूल कर बाप को और राजाई को याद करो, ये बहुत बड़ी आज्ञा है। देह से देह के सब संबंधों को भूलो, केवल मुझे याद करो, इतनी बड़ी आज्ञा है। जिस आज्ञा से हम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाते हैं, नर से नारायण बन जाते हैं। यही सदगति के लिए सतगुरु की श्रीमत है। जो इस श्रीमत को पालन करते अर्थात देही अभिमानी बनते हैं, वो ही पारस बुद्धि बनते हैं। तो कैसे बनेंगे? नर से नारायण, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि, देह से देह के सब संबंधों को भूलो, केवल एक को याद करो, तो पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाएंगे, नर से नारायण बन जाएंगे। गीत है, आज अंधेरे में है हम इंसान, ज्ञान का सूरज प्रगटा दे भगवान। ओम शांति। ये कलयुगी दुनिया है, सब अंधेरे में है। यही भारत सोझरे में था, जब ये भारत स्वर्ग था। कब था सोझरे में? जब भारत स्वर्ग था। यही भारतवासी जो अब अपने को हिंदू कहलाते हैं, या और धर्मों में कन्वर्ट भी हो गए हैं, ये असुल देवी देवताएं थे। भारतवासी स्वर्गवासी थे। जब कोई धर्म नहीं था, जब कोई और धर्म नहीं था, केवल एक ही धर्म था। कौन सा धर्म था? आदि सनातन देवी देवता धर्म था। तो उस समय को भारत को क्या कहते थे? स्वर्ग, वैकुंठ, बहिष्ठ, हेवन, ये सब भारत के ही नाम थे। भारत के ये नाम थे। भारत प्राचीन पवित्र बहुत बहुत धनवान था। अभी तो भारत कंगाल है, क्योंकि अब कलयुगी है। वो सतयुग था। तुम सब भारतवासी हो। सब डबल विदेशी भी अपने को क्या कहते हैं? हम आदि भारतवासी है। परंतु ड्रामा अनुसार कैसे और धर्मों में चले गए, फिर वापस भारतवासी अनुभव करते हैं। तो बाबा कहते हैं, तुम सब भारतवासी हो, तुम जानते हो हम अंधियारे में हैं। जब स्वर्ग में थे तो सोझरे में थे। स्वर्ग को, स्वर्ग के राज राजेश्वर, राज राजेश्वरी श्री लक्ष्मी नारायण थे। उनको सुखधाम कहा जाता है। नए नए आते हैं तो बाप फिर समझाते हैं, बाप से ही तुमको स्वर्ग का वर्षा लेना है। जिसको उस स्वर्ग के वर्षे को क्या कहेंगे, क्या कहते उसको? स्वर्ग के वर्षे को जिसको जीवन मुक्ति कहा जाता है। जीवन मुक्ति माना स्वर्ग का वर्षा। अभी सब जीवन बंधन में है, खास भारत और आम दुनिया। रावण की जेल शोक वाटिका में है। ऐसे नहीं कि रावण सिर्फ लंका में था और राम भारत में था। तो राम भारत में था, फिर भारत से वो कैसे सागर पार किया, पुल बनाई और फिर सागर पार करके लंका गया। तो बाबा कहते ऐसे नहीं कि रावण सिर्फ लंका में था और राम भारत में था और उसने आकर सीता चुराई। वो दूसरे देश में था रावण, लंका में था और भारत में आकर के उसने सीता चुराई। ये सब है दंत कथाएं। गीता है मुख्य, सर्व शास्त्रों में शिरोमणि, श्रीमत अर्थात भगवान की सुनाई हुई गीता। मनुष्य तो कोई की सदगति नहीं कर सकते। सतयुग में थे जीवन मुक्त देवी देवताएं जिन्होंने ये वर्षा कब पाया था। जीवन मुक्त देवी देवताएं उन्होंने वर्षा ये कब पाया था, कलयुग के अंत में पाया था। भारत को ये पता नहीं था, न कोई शास्त्र में है। भारत को ये पता नहीं था, किसी को भी पता नहीं था, न कोई शास्त्र में है। शास्त्र तो सब है भक्ति मार्ग के लिए, वो सब भक्ति मार्ग का ज्ञान है। सदगति मार्ग का ज्ञान मनुष्य मात्र में है नहीं। कितनी बड़ी अथॉरिटी के ये बोल है कि सदगति मार्ग का ज्ञान मनुष्य मात्र में है ही नहीं। जो कुछ भी सुनाते हैं वो सब भक्ति मार्ग। बाप कहते हैं मनुष्य मनुष्य के गुरु बन ही नहीं सकते हैं, क्योंकि गुरु वो जो अंधकार से निकाल रोशनी में ले जाए और गति सदगति करे। तो कोई भी देहधारी गति सदगति तो कर नहीं सकता, इसलिए बाबा कहते हैं मनुष्य मनुष्य के गुरु बन नहीं सकते। गुरु कोई सदगति दे नहीं सकते, भले कहलाते गुरु है लेकिन सदगति तो दे नहीं सकते। वो गुरु कहेंगे, अब क्या कहेंगे गुरु, वो कहेंगे भक्ति करो, दान पुण्य करो। भक्ति तो द्वापर युग से चली आई है, सतयुग त्रेता में है ज्ञान की प्रारब्ध। ऐसे नहीं सतयुग त्रेता ज्ञान की प्रारब्ध है, ऐसे नहीं कि वहाँ ये ज्ञान चलाता है, वहाँ ये ज्ञान नहीं है। ये जो वर्षा भारत को था, सदगति का वर्षा भारत को था, ये बाप से संगम पर ही मिला था, जो फिर अभी तुमको मिल रहा है ना, फिर से मिल रहा है। भारतवासी नरकवासी महान दुखी बन जाते हैं तब पुकारते हैं। जब भारतवासी नरकवासी महान दुखी बन जाते हैं तब पुकारते हैं हे पतित पावन दुख हरता सुख करता। अब वो पतित पावन दुख हरता सुख करता किसका, किसका है वो पतित, किसका है वो पतित पावन और दुख हरता सुख करता। तो कहेंगे सर्व का, सर्व का, ऐसे नहीं थोड़ों का सदगति दाता है या दुख हरता सुख करता या पतित पावन है, सर्व आत्माओं का। तो सर्व का, क्योंकि खास भारत और आम दुनिया पांच विकारों में है। सारी दुनिया में पांच विकार हैं। बाप है पतित पावन। बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम पर आता हूँ और क्या बनता हूँ, और सर्व का सदगति दाता बनता हूँ। कब आता हूँ, कल्प 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 के संगम पर आता हूँ और सर्व का सदगति दाता बनता हूँ। अब सर्व का सदगति दाता माना सबका, सर्व माना सर्व। अहिल्याएं अबलाएं गणकाएं और गुरु लोग, कहाँ अहिल्या कुब्जा गणका और ये सब, और कहाँ फिर गुरु लोग सबका, और फिर गुरु लोग जो है उनका भी उद्धार मुझे करना है। क्यों, क्यों मुझे करना है, क्योंकि ये तो है ही पतित दुनिया, तो पतित दुनिया में कोई भी किसी का उद्धार नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो है ही पतित दुनिया। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है। भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ये भारतवासी भी नहीं जानते हैं कि ये स्वर्ग के मालिक थे। जब पूछो ना, लक्ष्मी नारायण की पूजा तो करते हैं लेकिन उनसे पूछो ये कब था, कब थे, तो कहेंगे तो स्वर्ग में थे। तो बाबा कहते हैं ये भारतवासी भी नहीं जानते हैं कि भारत में ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था। पतित खंड माना झूठ खंड, पावन खंड माना सच खंड। तो भारत पावन खंड था। इन लक्ष्मी नारायण की सूर्यवंशी डायनेस्टी थी। ये भारत है, क्या है भारत? अविनाशी खंड, अविनाशी खंड, जो कभी विनाश नहीं होता। हाँ, किसी ने मेरे से पूछा कहीं भारत में तो बम नहीं गिरेगा? हाँ, भारत में बम नहीं गिरेगा, अभी वहां तो बम गिर रहे हैं, मिसाइलें गिर रही है, क्या क्या हो रहा है। तो देखो, भारत, बाबा कहते हैं भारत तो अविनाशी खंड है। यहाँ पर वो एटॉमिक वॉर नहीं होगा, अणु युद्ध नहीं होगा, यहाँ पर ग्रह युद्ध होगा। तो ग्रह युद्ध के लिए भारत में होगा। तो ये भारत है अविनाशी खंड, जो कभी विनाश नहीं होता। जब इनका राज्य था लक्ष्मी नारायण का, तो और कोई खंड था नहीं। ये सब बाद में आते, एक ही भारत था, सारा विश्व एक ही भारत था, और कोई खंड अलग अलग जो अभी बन गए वो सब नहीं थे। शास्त्रों में सबसे बड़ी भूल तो यह की है, कौन सी बड़ी भूल कर दी है, कि जो कल्प लाखों वर्ष का लिख दिया है। बाप कहते हैं कि न तो लाखों वर्षों का कल्प होता है और न सतयुग लाखों वर्ष का होता है, क्योंकि सतयुग को तो बहुत दूर कर दिया है, 4,32,000 साल तो कलयुग है, फिर उसका डबल है द्वापर युग, फिर उसका ट्रिपल है त्रेता युग, फिर उसका 4 गुना है सतयुग। तो कितना लंबा बना दिया सतयुग को। तो बाबा कहते हैं न कल्प लाखों वर्ष का होता है, न सतयुग भी लाखों वर्ष का होता है। कल्प की आयु ही 5,000 वर्ष है, ये फिर कह देते हैं, तो एक तो लाखों वर्ष, फिर दूसरा क्या कह देते हैं, मनुष्य 84 लाख जन्म लेते हैं। मनुष्य को कुत्ते बिल्ली आदि बना दिया है, परंतु उनका तो जन्म अलग है, कुत्ते बिल्ली उनका तो जन्म अलग है। 84 लाख वैरायटी जरूर है, इतनी स्पीसीज है, इतनी वैरायटी है, लेकिन मनुष्य की वैरायटी एक ही है, उनके ही 84 जन्म हैं। तो बाप कहते हैं बच्चे तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, भारतवासी अपने धर्म को ड्रामा प्लान अनुसार भूल गए हैं। कोई पूछे क्यों भूल गए, इतने ऊंचे धर्म के थे फिर भूल क्यों गए, ड्रामा, ड्रामा शब्द कह के प्रश्न फुल स्टॉप लग जाता है प्रश्न को। भारतवासी अपने धर्म को ड्रामा प्लान अनुसार भूल गए हैं, कलयुग अंत में बिल्कुल पतित बन पड़े हैं। फिर बाप आकर संगम पर पावन बनाते हैं, इसको कहा जाता है इस कलयुगी दुनिया को दुख धाम। फिर पाठ तुम्हारा सुख धाम में होगा। बाप कहते हैं हे बच्चों तुम भारतवासी ही स्वर्गवासी थे, फिर तुम 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते हो, सतो से रजो, रजो से तमो में जरूर आना है। तुम देवताओं जितना धनवान, एवर हैप्पी एवर हेल्दी कोई नहीं होता, हाईएस्ट भी रिचेस्ट भी होलीएस्ट भी और कोई होता नहीं। भारत कितना साहूकार था, हीरे जवाहरात तो बड़े बड़े पत्थर मिसल थे, बड़े बड़े पत्थर होते रास्ते में दिखते, बाबा के तो हीरे ऐसे थे, इतने बड़े बड़े हीरे, तो हीरे जवाहरात तो बड़े बड़े पत्थर मिसल थे, कितने तो टूट गए, हीरे भी टूटते तो है ना, तो ये टूट गए हैं। बाप तुम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं कि तुमको कितना साहूकार बनाया था, तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा सब नशा चढ़ता हम ही ये थे। यथा राजा रानी तथा प्रजा इनों को भगवान भगवती भी कह सकते हैं। अब एक तरफ बाबा कहते भगवान भगवती भी कह सकते हैं, फिर बाबा कहते नहीं हाँ परंतु बाप ने समझाया है कि भगवान तो एक ही है, तो भगवान भगवती भी कह सकते हैं, लेकिन परमात्मा बाप भगवान तो एक ही है। नहीं तो क्या समझते हिंदुओं के तो कितने भगवान है, अगर कहेंगे भगवान भगवती तो कहेंगे कितने भगवान है, हाँ हमारा तो एक ही है। हम कहते नहीं हम भी यही कहते एक ही है, पर ये भगवान भगवती क्यों कहा, क्योंकि भगवान ने इनको इतना ऊंचा बनाया। परंतु फिर बाबा कहते हैं भगवान भगवती नहीं ये तो देवी देवता हैं। तो बाबा कहते हैं परंतु बाप ने समझाया है कि भगवान एक है, वो बाप है। सिर्फ ईश्वर व प्रभु कहने से भी याद नहीं आता कि वो सभी आत्माओं का बाप है। केवल हे ईश्वर हे प्रभु के कहने से ही वो पिता है सबका आत्माओं का ये नहीं बुद्धि में आता। ये तो है बेहद का बाप। वो समझाते हैं कि भारतवासी तुम जयंती तो मनाते हो, शिव जयंती मनाते हो, परंतु असुल में बाप कब आए थे वो कोई भी नहीं जानते। है ही आयरन एज पत्थर बुद्धि, तो कैसे जानेंगे, आयरन एज पत्थर बुद्धि है। पारसनाथ थे इस समय पत्थरनाथ है। फिर बाबा करेक्ट करते हैं पत्थरनाथ भी नहीं कहेंगे, पत्थरनाथ हम पारसनाथ की भेंट में पत्थरनाथ, बाबा कहते पत्थरनाथ भी नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे पत्थरनाथ, क्योंकि नाथ तो है नहीं, नाथ तो किसको कहेंगे, राजा को कहते हैं, तो राजा ही तो है नहीं भारत में, तो पत्थरनाथ भी नहीं कहेंगे। पत्थरनाथ भी नहीं कहेंगे क्योंकि राजा रानी तो है नहीं। पहले यहाँ दैवी राजस्थान था, फिर आसुरी राज्य बन जाता है, ये खेल है। देवी राजस्थान से आसुरी राजस्थान ये खेल है, वो है हद का ड्रामा और ये है बेहद का ड्रामा। बेहद का ड्रामा एक कहानी के रूप में वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी आदि से अंत तक तुम अभी जानते हो और कोई भी नहीं जानते। भारत में जब देवी देवताएं थे तो क्या था, हाँ तो सारी सृष्टि के मालिक थे। देवी देवताएं थे भारत में तो सारी सृष्टि के मालिक थे, और भारत में ही थे, ऐसे नहीं किसी और खंड में थे लक्ष्मी नारायण, भारत में ही थे। बाप भारतवासियों को स्मृति दिलाते हैं सतयुग में आदि सनातन देवी देवता उन्हों का श्रेष्ठ धर्म श्रेष्ठ कर्म था, फिर 84 जन्मों में उतरना पड़े। ये बाप बैठ कहानी सुनाते हैं, ये सारा जो कुछ सुनाया बाबा ने ये कहानी के रूप में सुनाया। ये बाप बैठ कहानी सुनाते हैं कि अब तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। एक की बात नहीं, केवल एक के अनेक जन्मों के अंत का जन्म नहीं है, एक लक्ष्मी नारायण के अनेक जन्मों के अंत का जन्म नहीं है, एक की बात नहीं, और न ही युद्ध का मैदान आदि है। भारतवासी ये भी भूल गए हैं कि इनों का यानी लक्ष्मी नारायण का राज्य था, भारत में ही था, ये भूल गए हैं। सतयुग की आयु लंबी करने से बहुत दूर ले गए हैं, लक्ष्मी नारायण को बहुत दूर ले गए हैं, क्योंकि कल्प की आयु बहुत लंबी कर दी है। तो बाप समझाते हैं कि मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते, मनुष्य मनुष्य की सदगति नहीं कर सकता। ये सत्य बात भगवान कहते हैं, मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते और मनुष्य मनुष्य की सदगति नहीं कर सकता। कहावत है, क्या है कहावत, कि सर्व का सदगति दाता पतितों को पावन करता एक ही है। तो ये है झूठ खंड, सच्चा बाबा सच खंड स्थापन करने वाला है। भक्त पूजा करते हैं, परंतु भक्ति मार्ग में जिसकी भी पूजा करते आए हैं, एक की भी बायोग्राफी नहीं जानते, एक की भी बायोग्राफी नहीं जानते, जीवन कहानी नहीं जानते। शिव जयंती तो मनाते हैं, बाप है नई दुनिया का रचयिता, हेवनली गॉड फादर, बेहद सुख देने वाला। कौन है बाप? हेवनली गॉड फादर, बेहद सुख देने वाला। सतयुग में सुख था, वो कैसे और किसने स्थापन किया? इतना सुख किसने और कैसे स्थापन किया? नर्कवासी को स्वर्गवासी बनाया, भ्रष्टाचारियों को श्रेष्ठाचारी देवता बनाया। ये तो बाप का ही काम है, केवल वो एक ही कर सकता है, ये उसका ही काम है। तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ, तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, फिर तुमको पतित कौन बनाती है? स्वर्ग के मालिक बन गए, इतने धनवान, हाईएस्ट होलीएस्ट रिचेस्ट बन गए, फिर तुमको पतित कौन बनाते हैं? ये रावण, रावण दोषी कौन? रावण। मनुष्य कह देते हैं सुख दुख ईश्वर देते हैं। बाबा कहते हैं मनुष्य कहेंगे सुख दुख ईश्वर देते हैं। तो अब बाप कहते हैं मैं तो सबको सुख देता हूँ, मैं थोड़ी दुख देता हूँ। आधा कल्प फिर तुम बाप का सिमरण नहीं करेंगे, इतना सुख देता हूँ जो फिर तुम आधा कल्प मेरा सिमरण ही नहीं करेंगे, याद ही नहीं करेंगे। फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तो सबकी पूजा करने लग पड़ते हैं। ये तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, है ना? सत्यनारायण की कथा बाबा सुना रहे ना, ये तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। कहते हैं बच्चे बाबा को, कहते हैं बाबा हमने कितने जन्म लिए हैं, कितने जन्म लिए हैं? तो बाप कहते हैं बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, कितने जन्म लिए हैं पूछना माना, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। तो जब तो बाबा बताते हैं कितने जन्म लिए, तुमने पूरे 84 जन्म लिए हैं, तुम 21 जन्म लिए बेहद के बाप से वर्षा लेने आए हो, अर्थात 21 जन्म बेहद के बाप से वर्षा लेने आए हो, अर्थात सच्चे सच्चे सत्य बाबा से सत्य कथा नर से नारायण बनने का ज्ञान सुनते हो। ये है ज्ञान और वो है भक्ति। ये स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल सुप्रीम रूह आकर तुमको देती है। केवल एक सुप्रीम सोल, सुप्रीम रूह, स्पिरिचुअल फादर, वही आकर के सत्य ज्ञान देते हैं। तो बच्चों को देही अभिमानी बनना पड़े, अपने को आत्मा निश्चय कर माम एकम याद करो। शिव बाबा तो सभी आत्माओं का बाप है, आत्माएं सब परम धाम से पाठ बजाने आती है शरीर में। इसको, इस दुनिया को कर्म क्षेत्र कहा जाता है। बड़ा भारी खेल चल रहा है इस कर्म क्षेत्र पर, बड़ा भारी खेल है। आत्मा में बुरे व अच्छे संस्कार रहते हैं, जिस अनुसार ही मनुष्य को जन्म मिलता है। कैसा जन्म मिलता है, अच्छा या बुरा, उसके संस्कार अनुसार ही उनको वैसा जन्म मिलता है, अच्छा या बुरा। ये जो पावन था, अभी पतित है। ब्रह्मा बाबा के लिए शिव बाबा कहते हैं, ये जो पावन था अभी पतित है, तत्त्वम, तुम भी ऐसे ही थे, तुम भी ऐसे पावन थे फिर पतित बने। तत्त्वम, मुझ बाप को इस पराई रावण की दुनिया पतित शरीर में आना पड़ता है। आना भी उसमें है, किसमें आना है, और किसी में नहीं आ सकते हैं, एक में ही आ सकते हैं, वो भी कौन, आना भी उसमें है जो पहले नंबर में जाना है। जिसको पहले नंबर में जाना है उसी में ही आना है, क्योंकि तो उनमें आवे तभी तो उनको पहला नंबर वो जा सके ना। तो आना भी उसमें है जो पहले नंबर में जाना है। सूर्यवंशी ही पूरे 84 जन्म लेते हैं, ये है ब्रह्मा और ब्राह्मण, सब ब्राह्मण किसके बच्चे, ब्रह्मा के अलौकिक बच्चे। तो ये है ब्रह्मा और ब्राह्मण। तो बाप समझाते हैं रोज, हाँ रोज बाबा समझाते हैं, लेकिन पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाना मासी का घर नहीं है। रोज बाबा कहते हैं देश है दे के सब धर्मों को भूलो, लेकिन फिर भी फंसे रहते हैं। तो बाबा कहते हैं पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाना मासी का खेल नहीं है। हे आत्माएं अब देही अभिमानी बनो, हे आत्माएं एक बाप को याद करो और राजाई को याद करो। देह के संबंधों को छोड़ो तो पारस बुद्धि बन जाएंगे। गीता में ये पढ़ते आए ना, रोज गीता पढ़ते हैं लेकिन कहाँ भूलते हैं। देह के संबंधों को छोड़ो तो पारस बुद्धि बन जाएंगे। मरना तो सबको है, मरना तो सबको है ना। अर्जुन को कहा इन सबको मारो, तो कहा मैं कैसे मारू, हाँ इनको तो भगवान ने कहा ये तो वैसे ही मरे पड़े हैं, मरना तो सबको है। इसलिए बाबा कहते हैं मरना तो सबको है, तो बस तुम भूलो। ऐसे नहीं कि तुम कोई तीर कमान लेकर मारो, लेकिन भूलो। तो इसीलिए बाबा कहते हैं देह के संबंधों को छोड़ो तो पारस बुद्धि बन जाएंगे। मरना तो सबको है, सबकी अब वान परस्त अवस्था है। एक सतगुरु बिगर सर्व का सदगति दाता कोई भी हो नहीं सकता। हाँ एक सतगुरु के बिगर सर्व का सदगति दाता कोई भी हो नहीं सकता। तो बाप कहते हैं हे भारतवासी बच्चों तुम पहले पारस बुद्धि थे। गाया हुआ है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। तो पहले पहले तुम भारतवासी देवी देवता धर्म वाले आए हो और धर्म वाले पीछे आए हैं, तो उनके जन्म भी थोड़े होते हैं। जो जो पीछे आती जाती आत्माएं उनके जन्म भी थोड़े होते हैं। सारा सृष्टि का झाड़ कैसे फिरता है वो बाप बैठ समझाते हैं। जो धारणा कर सकते हैं उनके लिए तो बहुत सहज है, हम सबके लिए बहुत सहज है ना, क्योंकि हम धारणा कर सकते हैं तो उनके लिए तो बहुत सहज है। आत्मा धारण करती है, पुण्य आत्मा और पाप आत्मा आत्मा बनती है। तुम्हारा अंतिम 84वां जन्म है, तुम वानप्रस्थ अवस्था में हो। वानप्रस्थ अवस्था वाले गुरु करते हैं, है ना, तो गुरु करते हैं वानप्रस्थ अवस्था वाले। किस लिए गुरु करते हैं, मंत्र लेने लिए, तो उनको मंत्र मिल जाता है, तो मंत्र लेने के लिए गुरु करते हैं। अब तुमको बाहर का मनुष्य गुरु करना नहीं है। शिव बाबा सबसे बड़ा सतगुरु, उन्होंने मंत्र दे दिया है महामेकम याद करो। तो अब तुमको बाहर का मनुष्य गुरु करना नहीं है, तुम सभी का मैं बाप टीचर सतगुरु हूँ। मुझे कहते ही हो शिव बाबा को, हम क्या कहते हैं, हे पतित पावन शिव बाबा, अभी स्मृति आई है कि सभी आत्माओं का वो बाप है। आत्मा सत्य है, चैतन्य है। आत्मा सत्य है, चैतन्य है, क्योंकि अमर है। अजर अमर, अभी अजर माना कभी बुढ़ापा नहीं आता है, अमर कभी मरती नहीं, अविनाशी कभी विनाश को नहीं पाती, सत्य है, चैतन्य है, अमर है। सभी आत्माओं में पाठ भरा हुआ है। बाप भी सत्य चैतन्य है, वो भी आत्मा है, तो वो भी सत्य चैतन्य है। वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप होने कारण कहते हैं, हाँ बीज ही कह सकता है, कि मैं सारे झाड़ के आदि मध्य अंत को जानता हूँ, इसलिए मुझे नॉलेजफुल कहा जाता है। तुमको भी सारी नॉलेज है कि बीज से झाड़ कैसे निकलता है। उस बीज ने हमको सारे झाड़ का नॉलेज दिया है, तो हम भी अभी जान गए हैं कि बीज से झाड़ कैसे निकलता है। झाड़ बढ़ने में तो टाइम लगता है ना, तो बाप कहते हैं मैं बीज रूप हूँ, अंत में सारा झाड़ जर्जरी भूत अवस्था को पाता है। अभी देखो, देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, प्रायः लोप है। जब देवी देवता धर्म गुम हो जाता है, तब बाप को आना पड़े। कब आना पड़े बाप को? जब देवी देवता धर्म गुम हो जाता है। एक धर्म की स्थापना कर बाकी सब का विनाश करा देते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बाप स्थापना करा रहे हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की। तो तुम आए हो, किसलिए आए हो सब बाबा के पास? भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी देवता बनने लिए। हाँ, हम सब क्यों आए हैं बाबा के पास? भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी देवता बनने लिए। ये ड्रामा बना हुआ है, इनकी एंड होती नहीं है, एंड होती नहीं है। बाप आते हैं, आत्माएं सब ब्रदर्स हैं, मूल वतन में रहने वाली, जो उस एक बाप को सब याद करते हैं। दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। फिर तो उसमें कबीर का ये दुआ है, जो सुख में सिमरण करे तो दुख काहे को होए। अब दुख तो होना ही है, इसलिए सुख में सिमरण करते ही नहीं है, तो इसलिए बाबा कहते हैं या सिमरण तो करते, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। तो रावण राज्य में सब दुख में दुख है, यहाँ सिमरण करते हैं, तो बाप सर्व का सदगति दाता एक है, उनकी महिमा ही अलग है। बाप न आए तो पावन कौन बनाए? उनको ही आना है पावन बनाने लिए, वो न आए तो कौन बनाए? क्रिश्चियन इस्लामी आदि जो भी मनुष्य है, इस समय सब तमोप्रधान है, सब तमोप्रधान, सब धर्मों की आत्माएं तमोप्रधान है। सभी को पुनर्जन्म जरूर लेना है। अभी पुनर्जन्म मिलता है नरक में, नरक में शरीर छोड़ते हैं तो फिर पुनर्जन्म भी नरक में मिलता है। ऐसे नहीं कि सुख में चले जाते हैं, ऐसे नहीं कि जो मरा वो स्वर्ग में चला गया, नहीं, ऐसे नहीं कि सुख में चले जाते हैं। जैसे हिंदू धर्म वाले कहते हैं, हाँ हिंदू धर्म सिख धर्म सब ये कहते हैं कि स्वर्गवासी हुआ, स्वर्गवासी हुआ, कोई ने शरीर छोड़ा तो कहेंगे स्वर्गवासी हुआ। तो अब बाबा कहते हैं जरूर, अगर स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नरक में था, अभी स्वर्ग में गया। हाँ, अभी स्वर्गवासी हुआ माना पहले नरक में था। तुम्हारे तो अगर कोई कहे ना कि अभी वो स्वर्गवासी हुआ, तो बाबा कहते उनको कहो तुम्हारे मुख में गुलाब। तुम तो बहुत अच्छी बात कह रही हो। जब कोई बहुत अच्छी बात कहता है ना, तो उसको कहा जाता है तुम्हारे मुख में गुलाब। तो अगर अच्छी बात कह रहा है तो स्वर्गवासी हुआ, स्वर्ग में गया, तो तुम्हारे मुख में गुलाब। फिर बाबा इसके बाद फिर क्या कहते, अच्छा जब स्वर्गवासी हुआ फिर उसको नर्क के आसुरी वैभव क्यों खिलाते हो? वो तो स्वर्गवासी हो गया, वहां कौन सी उसको कमी होगी जो उनको आसुरी नर्क के का भोजन खिलाते हो? पितृ खिलाते हैं ना, पितृ खिलाते हैं। बंगाल में तो मछली अंडे आदि भी खिलाते हैं। ब्राह्मण लोग जो है ना, वो भी मछली अंडे खाते हैं वहां पर, ये बंगाल में। और स्त्री तो जो जो स्त्री है, पति उसका जीवित है, उसको तो मछली खाना ही है। अगर वो कहे मैं मछली नहीं खाऊंगी तो वो समझते कि ये तो जैसे पति वैसे पति मर जाएगा इसका, अगर स्त्री मछली नहीं खाएगी तो खाना ही है। तो देखो बाबा कहते हैं बंगाल में मछली अंडे आदि खिलाते हैं, अरे उनको ये सब खाने की दरकार क्या है? अब स्वर्ग में मछली अंडा मिलेगा क्या? तो वहां नहीं मिलेगा, तो इसलिए यहाँ उनको खिलाते हैं। तो सब खाने की दरकार क्या है? वापस तो कोई जा नहीं सकता। जबकि पहले नंबर वाले वालों को 84 जन्म लेना पड़ता है। सबको जो पहले जन्म वालों को भी 84 जन्म लेना पड़ता है। तो पीछे आने वाले कैसे? हाँ बाबा कहते हैं जो ये और 84 जन्म लेंगे, वापस कोई भी नहीं जा सकता है। इसलिए पहले नंबर वालों को भी 84 जन्म लेना पड़ता है, तो बाद में आने वाले कैसे वापस जा सकते हैं? तो बाबा कहते हैं उनको भी 84 जन्म लेना पड़ता है। अब इस ज्ञान में कोई तकलीफ नहीं है। भक्ति मार्ग में तो कितनी मेहनत है, कितनी मेहनत करते हैं, राम राम जपते रोमांच खड़े हो जाते हैं। कब अनुभव किया है? राम 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 राम, वो जपते जाते राम 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 राम। अगर एक ग्रुप पूरा हुआ फिर दूसरा उसको कंटिन्यू करता, फिर तीसरा कंटिन्यू करता, तो ऐसे रोमांच खड़े हो जाते हैं उनके। तो जैसे रोमांच खड़े हो जाते हैं, ये सब है भक्ति मार्ग। ये सूर्य चांद आदि रोशनी करने वाले हैं, ये देवताएं थोड़ी है। ये सूर्य चंद्रमा ये सितारे ये सब इस सृष्टि रूपी मांडवे की बतियां हैं, ये देवताएं थोड़ी है। वास्तव में किसको कहेंगे देवता? वास्तव में ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारे यहाँ की महिमा है। इस संगम युग पर ज्ञान सूर्य भी है, ज्ञान चंद्रमा भी है और ज्ञान सितारे भी है। ज्ञान सूर्य है शिव बाबा, ऐसे कहेंगे ना। फिर ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा माँ, तो अगर ब्रह्मा माँ है वो बड़ी माँ, ये छोटी माँ, और फिर ज्ञान सितारे सब बाबा के बच्चे, और ज्ञान सितारे ये यहाँ की महिमा है। अच्छा सभी ज्ञान सितारों की महिमा है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, इस अंतिम 84वें जन्म में कोई भी पाप कर्म यानी विकर्म नहीं करना है। विकर्म कैसे बनते हैं? कोई भी विकार के वश कर्म वो विकर्म बनता है, और विकार के वश कर्म कब बनते हैं? जब देह अभिमान में है। तो इसीलिए इस अंतिम जन्म व अंतिम 84वें जन्म में कोई भी पाप कर्म या विकर्म नहीं करना है। पुण्य आत्मा बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, संपूर्ण पावन बनना है। इस अंतिम जन्म में संपूर्ण पावन बनना है। दूसरा, अपनी बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? देह के सब संबंधों को भूल देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है, तभी पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाएंगे। हाँ, देह के सब संबंधों को भूल देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। पर वरदान, पुराने संस्कारों व विघ्नों से मुक्ति प्राप्त करने वाले सदा शक्ति संपन्न भव। कैसे बनेंगे सदा शक्ति संपन्न? जब पुराने संस्कारों व विघ्नों से मुक्ति प्राप्त करेंगे, तो पुराने संस्कारों व विघ्नों से मुक्ति प्राप्त करने वाले सदा शक्ति संपन्न भव। किसी भी प्रकार के विघ्नों से, कमजोरियों से या पुराने संस्कारों से मुक्ति चाहते हो, हम सब चाहते हैं ना, पुराने विघ्नों से, कमजोरियों से, पुराने संस्कारों से मुक्ति चाहते हो, तो शक्ति धारण करो। अब शक्ति धारण करो उसके लिए, अर्थात अलंकारी रूप होकर के रहो, अलंकारी बन जाओ तो शक्ति रूप कहलाएंगे। तो अलंकारी रूप होकर के रहो। जो अलंकारों से सदा सजे सजाए रहते हैं, वो भविष्य में विष्णु वंशी बनते हैं। तो कौन से अलंकारों से सजाओ अपने आप को? शंख, चक्र, गदा, पद्म, और जो देवियों को इतने सारे अलंकार दिखाए हैं, वो सब तो हम ही धारण करते हैं ना। तो बाबा कहते हैं, जो अलंकारों से सदा सजे सजाए रहते हैं, वो भविष्य में विष्णु वंशी बनते हैं। लेकिन अभी क्या बनते हैं? वो भविष्य में तो विष्णु वंशी बनेंगे, अभी वैष्णव बन जाते हैं, वैष्णव बन जाते हैं। हाँ, कंप्लीट, जिसको बाबा कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, वैष्णव बन जाते हैं। उन्हें कोई भी तमोगुणी संकल्प व संस्कार टच नहीं कर सकता। वो वैष्णव उनको समझते हैं ना, जो अगर किसी ने उनको टच कर दिया, हाथ भी लगाया, तुरंत जाके स्नान करेंगे। कई तो वैष्णव ऐसे होते हैं जो खाना भी अलग से पकाएंगे, किसकी नजर भी ना पड़े, खाएंगे भी अलग, कोई नजर ना पड़े, इतना ऐसे पक्के कट्टर होते हैं, तो उसको वैष्णव कहते हैं। तो बाबा कहते हैं, वास्तव में वैष्णव किसको कहेंगे? वैष्णव उनको कहेंगे कि कोई भी तमोगुणी संकल्प व संस्कार टच नहीं करे, तब कहेंगे सच्चे वैष्णव। तमोगुणी संकल्प व संस्कार भी टच नहीं कर सकता। वे पुरानी दुनिया अथवा दुनिया की कोई भी वस्तु और व्यक्तियों से सहज ही किनारा कर लेते हैं। उन्हें कारणे अकारणे भी कोई टच नहीं कर सकता। बहुत बड़ी बात है, तभी कहलाएंगे पक्के वैष्णव। संस्कार, स्वभाव, संकल्प, कोई भी विकार टच नहीं कर सकता। उन्हें कारणे अकारणे भी कोई टच नहीं कर सकता। स्लोगन, हर समय हर कर्म में बैलेंस रखना ही सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त करने का साधन है। कैसे मिलेगी सबकी दुआएं? जब हर समय हर कर्म में बैलेंस रखना ही सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त करने का साधन है। अव्यक्त इशारे, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। उसके अंतर्गत जैसे आपस में दो मित्र होते हैं, अब ये जो बाबा कहते हैं ना, निर्भय और निश्चिंत, निश्चय का फाउंडेशन, तो जैसे आपस में दो मित्र होते हैं, तो उनके बीच यदि कोई उनकी ग्लानी करने आता है, तो उनके बीच यदि कोई उनकी ग्लानी करने आता है तो वो उसके भाव को बदल देते हैं। अगर उनके मित्र के बारे में कोई ग्लानी करे तो जो सच्चा मित्र होगा वो उनका भाव बदली करेगा कि नहीं ऐसे नहीं है, तुम ऐसे नहीं सोचो, ऐसे वो है नहीं, क्योंकि उसका वो मित्र है, तो वो उसके भाव को बदल देते हैं। जहाँ निश्चय होता है वहाँ शब्द का भाव बदल साधारण बात हो जाती है। जहाँ निश्चय होता है वहाँ शब्द का भाव बदल साधारण बात हो जाती है, यानी उनकी कोई कटाक्ष कोई ग्लानी वो बात बदल जाती है, साधारण बात हो जाती है। तो हर एक की विशेषता को देखो तब अनेक होते हुए भी एक दिखाई देंगे। कैसे एकता होगी? जब एक दो की विशेषताएं देखेंगे, एक दो की ग्लानी करेंगे नहीं, एक दो का नुक्स नहीं निकालेंगे, विशेषता देखेंगे। तो बाबा कहते हर एक की विशेषता को देखो तब अनेक होते हुए भी एक दिखाई देंगे। एकदम संगठन हो जाएगा, कोई किसके ग्लानी की बातें सुनाए तो उसे टेका देने के बजाय, किसी की ग्लानी की बात कोई किसको सुनावे तो उसको टेका देने की बजाय, टेका देना माना हामी भरना, हाँ बरोबर वो तो है ऐसा, तो उसे टेका देने के बजाय सुनाने वाले का रूप परिवर्तन कर दो। जो अगर ग्लानी किसकी करता है तो वो सुनाने वाले का रूप परिवर्तन कर दो, उसको समझाओ कि ये गलत है तुम्हारी सोच, क्योंकि प्यार है ना, सब में एक प्यार है, तो क्यों ग्लानी करना। तो सुनाने वाले का रूप परिवर्तन कर दो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी तो जो नौवां ग्रुप के भाई बहने गए, आज से दसवें ग्रुप के भाई बहने, पंजाब जोन के भाई बहने आने शुरू हो गए हैं। पंजाब जोन से जो भी आए हैं हाथ उठाएं, देखो कितने आए हैं, सब पंजाब जोन से। हाँ, नीचे पंजाब जोन, पंजाब पंजाब दिखाई देगा जरूर। और डबल विदेशियों का भी जो लास्ट ग्रुप पूरा हुआ, डबल विदेशी हाथ उठाएं, डबल विदेशी देखो। हाँ, इतने सारे हैं, कुछ तो रुके हुए हैं क्योंकि उनको फ्लाइट नहीं मिली है, तो फिर कोई और फ्लाइट से जाएंगे तो इसीलिए लेट हो गया। और कोई तो अभी नए ग्रुप के लिए आए हैं, जो नए ग्रुप के लिए डबल विदेशी आए हैं वो हाथ उठाएं, नए ग्रुप के लिए, इस दसवें ग्रुप के लिए। अच्छा, तो आपके प्रोग्राम भी कल से शुरू हो गए हैं, अभी योग के बाद डबल विदेशियों को आज का प्रोग्राम देंगे। ओम शांति।